धवला पुस्तक सातवी लेक्चर नंबर एक ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अच्छायाणं नमो लोए सौवसाहूणं जय उधरसेनाहो जेण महाकम्मपयणिपाहुडसेलो बुद्धिशिरेणुद्धरियो समप्पियो पुप्पदन्तस्स। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। उसमें अभी जो द्वितीय खंड है उसका नाम है खुद्दा बंध, उसका क्षुद्रक बंध है, ऐसा भी उन्होंने संस्कृत में लिखा है, क्षुद्रक बंध और ये खुद्दा बंध। अभी हमने जो मंगलाचरण देखा है उसका अर्थ देखते हैं। सातवीं पुस्तक है आज से। जिन्होंने महाकर्म प्रकृति प्रावृत रूपी शैल, ये जो 12 अंग और उसके वो हमने पहले देखे थे ना, सूत्र बाद में पढ़ेंगे, पहले मंगलाचरण का अर्थ कहेंगे, है ना। देखो, जिन्होंने महाकर्म प्रकृति प्रावृत रूपी शैल का, शैल यानी पर्वत, अपने बुद्धि रूपी शिर से उद्धार किया, यानी ऐसा पर्वत उठा लिया जिसको कहेंगे बुद्धि, और पुष्पदंताचार्य को समर्पित किया, ऐसे धरसेनाचार्य जयवंत होवे। क्या कहना चाहते हैं? दर्शन आचार्य ने महाकर्म प्रकृति प्रावृत, जो उनके तो अंगों का कुछ ज्ञान था, उनके ये विकल्प आया कि अभी ये तो नष्ट होगा, तो आपको तो वो तो कथा मालूम है, पुष्पदंत और भूतबली वो दो आए और उन्होंने ये बातें उनको सिखा दी और बाद में इसकी रचना हुई है षटखंडागम की। तो ये दर्शनाचार्य की स्तुति करे, उसको नमस्कार करे। क्या है कैसे दर्शनाचार्य? महाकर्म प्रकृति प्रावृत रूपी शैल का अपने बुद्धि रूपी शिर से उद्धार किया, यानी उसके ज्ञाता थे, और पुष्पदंताचार्य को समर्पित किया, पुष्पदंत और भूतबली को उन्होंने वो सिखाया, ऐसे धरसेनाचार्य जयवंत होवे। अब यहां से अभी सूत्र प्रारंभ हो जाता है। जेते बंधगा नाम, क्योंकि ये कौन सी खुद्दा बंध में बंधक संत परुवणा, बंधकों की प्ररूपणा है। बंधक कौन है? तो जीव है, कर्म बांधने वाले वो बंधक कहलाएंगे। तो जेते बंधगा नाम तेसिम इमो निर्देशो, जो वे बंधक जीव है उनका यहाँ निर्देश किया जाता है। निर्देश यानी कथन, वो कौन है वो बताए जाते हैं। शंका, जो वे बंधक है ऐसा यह वचन बंधकों की पूर्व में प्रसिद्धि को सूचित करता है। अतः पहले किस ग्रंथ में प्रसिद्ध बंधकों की यह सूचना है? क्या कहना चाहते हैं? जो वे बंधक है कहकर, अभी हमारे वो पड़ोसी थे ना, ऐसा कह के नहीं, वो कोई पहले से जो मालूम है उसके लिए ऐसे शब्द आते हैं, जो वे है, क्योंकि ऐसे कौन से ग्रंथ में पहले उनके पता था हमको या यह सूचना दी थी। समाधान, यह सूचना महाकर्म प्रकृति प्रावृत में प्रसिद्ध बंधकों की है, वह इस प्रकार है। अभी हमने देखा था महाकर्म प्रकृति प्रावृत के कृति वेदना आदि 24 संयोग द्वारों में, क्योंकि एक प्रावृत में 24 अनुयोग द्वार, उसके 24 उसके जो अधिकार होते हैं, छठे अनुयोग द्वार बंधन के, उसका नाम है बंधन। उसमें चार अधिकार है, बंध, बंधक, बंधनीय और बंध विधान। देखो महाकर्म प्रकृति प्रावृत जो है उसमें 24 अनुयोग द्वार है, उसमें जो छठा अनुयोग द्वार है उसका नाम है बंधन, और वो बंधन में चार अधिकार है, कौन कौन से, बंध, बंधक, बंधनीय और बंध विधान। बंध है जो जीव और कर्म का जो बंध है उसको उस बंध कहेंगे, बंध कहने बांधने वाला वो जीव है, बंधनीय जो बंधा जाता है तो कर्म है ना, बंधनीय कर्म है, और बंध विधान उसका प्रोसेस, ये चार उसमें अधिकार है। सातवीं पुस्तक है उनमें जो बंधक नाम का दूसरा अधिकार है वही सूत्र वचन द्वारा सूचित किया गया है। कहने का तात्पर्य है कि जो वे महाकर्म प्रकृति प्रावृत में बंधक कहकर निर्दिष्ट किए गए हैं, उन्हीं का यहाँ निर्देश है। यानी महाकर्म प्रकृति प्रावृत है, उसके 24 संयोग द्वार में से छठे का नाम है बंधन, उसमें वो बंध, बंधक, बंधनी और बंध विधान, ये चार अधिकार में से यहाँ बंधक अधिकार की बात चलेगी। बंधक जीव ही होते हैं, बांधने वाले कौन है, तो जीव है, क्योंकि मिथ्यात्व आदि बंध के कारणों से रहित अजीव में, अजीव के बंधक भाव की उपपत्ति नहीं बनती। अजीवों में मिथ्यात्व आदि परिणाम नहीं है तो उसमें बंध भी नहीं है, इसलिए जो अजीव द्रव्य है वो बंधक नहीं है, तो बंधक कौन है, तो जीव द्रव्य है, जिसमें मिथ्यात्व आदि बंध के कारण पाए जाते हैं। अब शंकाकार पूछते हैं, उन्हीं बंधक जीवों का जीवस्थान खंड में, ये जीवस्थान खंड क्या है, अभी जो हम प्रथम खंड पढ़ चुके 6 पुस्तकों में उसका नाम क्या था, जीव, जीवस्थान। तो उन्हीं बंधक जीवों का जीवस्थान खंड में 14 गुण स्थानों की विशेषता सहित 14 मार्गण स्थानों में, क्या कहते हैं, हमने देखा था कि इसको 14 गुण स्थान बताए हैं और फिर 14 मार्गण में फिर गुण स्थानों की विशेषता बताई, यही तो उसका विषय था पूरा। पहले तो सत प्ररूपणा की थी पहले 2 पुस्तकों में, फिर उनका द्रव्य प्रमाण बताया था, फिर उसका क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव, अल्पभूत, तो सब कुछ बता चुके थे। यही यहाँ बता रहे हैं कि उन्हीं जीवों का जीवस्थान खंड में 14 गुणों स्थानों की विशेषता सहित 14 मार्गण स्थानों में सत, संख्या आदि 8 अनियोगों के द्वारा अन्वेषण किया गया है। ये सत, संख्या आदि 8 अनियोग द्वार कौन से है अश्विन भाई, अभी हमने बताया ना आपको, सत, संख्या, जैसे सत में तो 2 पहले 2 पुस्तकें तो सत प्ररूपणा में थे, संख्या ने द्रव्य प्रमाण अनुगम, फिर क्षेत्र, क्षेत्र के बाद स्पर्शन, फिर काल, अंतर, भाव और अल्पबोध, ये 8 अनियोग द्वार कहलाते हैं, द्वारा अन्वेषण किया गया है। अन्वेषण किया गया ना, उनकी खोज की गई, उसका विस्तार से रूप स्वरूप बताया गया था गुणस्थानों में और मार्गणास्थानों में। अब सत आदि प्ररूपणाओं द्वारा जाने हुए उन्हीं जीवों का फिर प्ररूपण करने पर पुनरुक्ति दोष उत्पन्न होता है, ये शंकाकार की शंका है। अभी उन्हीं की फिर चर्चा करेंगे, उसको तो बात हो गई अभी जीवों की। शोभा कुछ बोला, पेज नंबर 2 है मेरे में, आपको पेज निकला क्या, ये पुस्तक में बंधक यानी बांधने वाले जीव, इस पुस्तक का नाम है खुद्दा बंध यानी क्षुद्र बंध। ये द्वितीय खंड है, पहले जीवस्थान नामक प्रथम खंड था जिसकी बात हमने 6 पुस्तकों में देखी। उसमें जीवों के है गुणस्थान मार्गणास्थान बताए थे, फिर सत यानी है ऐसा बताया था, उनकी संख्या बताई थी, क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव और अल्पभूत, तो ये सब हम देख चुके थे। ये यहाँ नहीं लिखा है। इस पुस्तक का विषय है बंधक। तो शंकाकार ने ये शंका पूछी है कि जो हम जीवस्थान में तो इनके बारे में पढ़ चुके हैं, अब यहाँ फिर दोबारा बंधक कहकर उन्हीं जीवों का फिर दोबारा आप कथन करना चाहते हो, तो ये पुनरुक्ति दोष आता है, ये फिर रिपीटेडली वही बात क्यों कहना चाहते हो, ये इनका प्रश्न है। अभी उसका समाधान हम दूसरे पुस्तक पेज पर नीचे जो है वहां पढ़ेंगे। समाधान, पुनरुक्त दोष प्राप्त होता है यदि उन जीवों का उन्हीं गुणस्थानों की विशेषता सहित 14 मार्गणाओं में उन्हीं 8 अनुयोगों द्वारा अन्वेषण किया जाता, तो उसको कहते हम पुनरुक्त दोष। जो हमने 6 पुस्तकों में जो हमने विशेषताएं देखी सब वही अगर हम बताते तो पुनरुक्ति दोष कहते हैं। पुनरुक्ति समझ में आई? पुनरुक्ति यानी जो बताई बात फिर रिपीट करना, उसको बारंबार वही बात कहने के लिए उसको कहते पुनरुक्ति दोष। किंतु यहां तो अभी यहां इसका क्या विषय है, 14 गुणस्थानों की विशेषता को छोड़कर 14 मार्गणा स्थानों में 11 अनुयोग द्वारों से पूर्वोक्त जीवों की प्ररूपना की जा रही। जीव तो वही की वही है, पहले उनके गुणस्थानों की विशेषता सहित मार्गणा स्थानों में भी बताया था, अब क्या कहेंगे यहाँ पर, अभी वो गुणस्थानों की विशेषता नहीं बतानी है, वहां तो प्रत्येक गुणस्थान की विशेषता बताई थी, अब यहाँ इनका विषय क्या है, अभी 14 मार्गणा स्थानों में ये बताएंगे वो 11 अनुयोग द्वारा। बंधक की अपेक्षा से जो कुछ यहाँ अलग अलग टॉपिक्स अधिकार बताएंगे उसको 11 अनुयोग द्वार कहे, उसके द्वारा जैसे वहां सत संख्या वगैरह देखे हुए, यहाँ पर भी 11 अनुयोग द्वार हो गए। पूर्वोक्त जीवों की प्ररूपना की जा रही है, जीव तो वे की वही है परंतु उनके अलग पद्धति से यहाँ प्ररूपना चलेगी, अतः यहाँ पुनरुक्ति दोष नहीं प्राप्त होता। फिर शंका, जीवस्थान खंड में यानी प्रथम खंड में जो प्ररूपना की गई है उसी से यहाँ प्ररूपित किए जाने वाले अर्थ का ज्ञान हो जाता है, यानी वहां जो बातें बताई उसी से ये बातें सब यहाँ की समझ में आती है, अतः इस प्ररूपणा का हमें तो किंचित भी फल दिखाई नहीं देता। तो कहते आचार्य स्वयं शंका उठा रहे हैं और शिष्य के मुंह में डाल रहे हैं, क्योंकि उनको स्पष्ट करना है कि यहाँ ये विषय क्या है और यहाँ कौन सी प्ररूपणा अलग से होगी। उसका समाधान, ऐसा नहीं है, क्योंकि मार्गणा स्थानों में 14 गुण स्थानों की सत संख्या आदि रूप प्ररूपणा से मार्गणा स्थान विशेषित जीव प्ररूपणा का एकत्व नहीं पाया जाता। क्या कहते हैं, पहले गुणस्थानों में सत संख्या आदि बातें बताई, अब यहां मार्गणा स्थानों की अपेक्षा से उसमें विशेषताएं बताएंगे, यदि उस प्ररूपणा से इस प्ररूपणा में एकत्व होता तो हम जान लेते, किंतु हमें उन दोनों प्ररूपणाओं में एकत्व दिखाई नहीं देता। उस प्ररूपणा में और इस प्ररूपणा में अंतर है ये कहना चाहते हैं। अथवा ये तो जिसको कहते दंड चाहिए, क्वेश्चन मार्क नहीं चाहिए, दिखाई नहीं देता, ये करेक्शन करो पुराने पुस्तकों में। अथवा इस क्रम से स्थित द्रव्यादि अनुयोग द्वारों को लेकर जीवस्थान खंड की रचना की गई है, यह जतलाने के लिए बंधकों की प्ररूपणा प्रस्तुत है, अतएव बंधकों की प्ररूपणा न्याय प्राप्त है। इस क्रम से स्थित द्रव्यादि अनुयोग द्वारों की, इस द्रव्यादि अनुयोग द्वार किसको कहते हैं, वो द्रव्य प्रमाणानुगम क्षेत्र स्पर्शन वगैरह सब आ गए उसमें। अब ये बंधक की बात यहां से शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये पुस्तक ही इसका नाम क्या है? एक क्षुद्र बंध, और उसमें बंधक की चर्चा है, क्योंकि पहले ही सूत्र में क्या पूछा था, उन्होंने पूछा नहीं था, बताया था, जेते बंधगा नाम तेसिम इमो निर्देशो, जो वे बंधक जीव है उनका यहाँ निर्देश किया जाता है, उनके बारे में यहाँ बताएंगे। अब कहते बंधक चार प्रकार के हैं। हमेशा कोई भी विषय आता है तो उसमें निक्षेप लगाते हैं। अभी आपने सुना था ना निक्षेप की बात, शिविर में आई थी आप, हाँ। तो कौन से निक्षेप थे? नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। तो बंधक ये हमारा भी विषय है, उसी पर भी हम ये चार प्रकार से निक्षेप लगाएंगे। देखो बंधक चार प्रकार के हैं, नाम बंधक, स्थापना बंधक, द्रव्य बंधक और भाव बंधक। उनमें नाम बंधक, तो बंधक यह शब्द ही है जो जीव बंधक, अजीव बंधक आदि आड़ भंगों में प्रवृत्त होता है। क्या कहना चाहते हैं? उसमें हम नाम रखेंगे तो जीव का भी बंधक कहेंगे, अजीव बंधक, क्योंकि अजीव बंधक यानी ये तो नाम ही तो रखना है ना। ये हमने आठ भंग उसके देखे थे, उसके मेरे कॉम्बिनेशन आठ होते हैं ना। इसे एक जीव है, अजीव है, दोनों एक एक, फिर अनेक अनेक, एक अनेक वगैरह वगैरह, उसके कॉम्बिनेशन लिए थे। पहले आठ भंग किए थे हमने, वो होना चाहिए आठ भंगों में। याद आया? हमने आठ भंग कहीं की लेते हैं तो कैसे लेते हैं? एक जीव यानी जीव एक बाजू, एक बाजू अजीव यानी सिंगल सिंगल हो गए, फिर जीव और अजीव का भंग होगा। जीव और अजीव के भंग में एक जीव एक अजीव, एक जीव अनेक अजीव, फिर एक अजीव अनेक जीव, यानी अजीव जीव, इस तरह से कॉम्बिनेशन करते हुए आठ भंग हो जाते हैं। यहाँ उसका इन्होंने विस्तार नहीं, बस जीव बंधक अजीव नाम रखना है, बस इतना है। यानी नाम बंधक, तो बंधक यह शब्द है, बंधक यह शब्द है, ये बंधक नाम का एक शब्द है, तो हम जीव बंधक अजीव बंधक वैसे कहेंगे उसमें। यह नाम निक्षेप द्रव्यार्थिक नय का अवलंबन करके स्थित है, क्योंकि नाम की सामान्य में प्रवृत्ति देखी जाती है। क्या कहना चाहते हैं? किसी चीज का हम नाम रखते हैं तो इसको द्रव्यार्थिक नय का विषय कहते हैं, पर्यार्थिक नय का नहीं, बस इतनी बात समझ लो। चूंकि दिखाई देने के अनंतर समय में ही नष्ट हुए पदार्थों में संकेत ग्रहण करना नहीं बनता, यानी वो जो पदार्थ हमें दिखाई देते वो तो स्कंद है, वो तो कोई द्रव्य नहीं है, फिर भी हमने इसको पेंसिल, इसको रबर ये नाम दिया। तो कहते दिखाई देने के अनंतर समय में ही नष्ट हुए पदार्थों में वो संकेत ग्रहण करना नहीं बनता, परंतु जब तक है उसमें हम तो नाम रख सकते हैं उसका। अभी स्थापना बंधक किसको कहना? किसी एक चीज में वो ये बंधक है ऐसा हम कल्पना कर लेंगे तो उसको कहेंगे स्थापना बंधक। देखो उसमें काष्ठ कर्म, पोत कर्म, लेप्य कर्म आदि में सद्भाव व असद्भाव के भेद से जिनकी ये बंधक है इसी स्थापना की गई हो वे स्थापना बंधक है। जैसे स्थापना जो शतरंज में जो हम कहते हैं ये हाथी है, ये घोड़ा है, क्या किया वहां? स्थापना की। किसमें? वो काष्ठ में, वो लकड़ी की हो तो, ये हो सकता है पत्थर की हो तो, पोते ने वो तो लिमते है ना, हाँ हाँ। ये सब हमने पहली पुस्तक में बहुत विस्तार से देखा था, धवला की पहली पुस्तक में नाम, हाँ सिद्धांत कोश में, हाँ ये उसमें हमने तो भिंड कर्म वगैरह कितने उसमें नाम दिए थे, यानी उसके चित्र है, उसके काष्ठ के बनाते, हस्तिदंत के बनाते, अन्य अन्य उसके, उसको कर्म ने उससे बनाया हुआ है, लेप्य कर्म आदि में जैसे चित्र भी बनाया है, या कोई हमने कपड़े की कुछ खिलौने वगैरह बनाते, कोई हाथी घोड़ा बनाते, कपड़ों से बनाते हैं, या कोई काष्ठ से बनाते हैं, धातु से बनाते हैं, या अन्य अन्य जो भिंड वो क्या होता है, कुछ ऐसा सॉफ्ट मटेरियल अभी थर्मोकोल का बनाते हैं, जो कुछ चीजें हैं, तो ये सारे उसमें अलग अलग नाम देंगे उसको। उसमें सद्भाव और असद्भाव, सद्भाव और असद्भाव का अर्थ क्या है, जैसे जैसे घोड़े जैसा बनाया तो उसके घोड़े का आकार है, उसको सद्भाव तदाकार कहेंगे, असद्भाव ने अतदाकार। जैसे हम मूर्ति स्थापन करते मंदिर में, तो ये हमारे महावीर भगवान है, तो जैसे मुनि की जो अरिहंत की अवस्था की वैसा उनकी मूर्ति बनाते हैं, वो तदाकार स्थापना है, वो स्थापना ही नहीं, स्थापना निक्षेप से वो हमारे साक्षात भगवान महावीर है, ऐसे हम उनके साथ अपना व्यवहार होता है। तो यहाँ पर भी स्थापना बंधक, यह निक्षेप भी द्रव्यार्थिक नय के अवलंबन से स्थित है, क्योंकि यह यही वह यही है ऐसे एकत्व का निश्चय किए बिना स्थापना निक्षेप बन नहीं सकता। हमने क्या मंदिर जी में ये हमारे साक्षात ये वही है ने महावीर भगवान है, ऐसा हम एकत्व का निश्चय करते हैं, उसको हम कहेंगे स्थापना निक्षेप। चौथे पेज पर आते हैं। अभी जो द्रव्य बंधक है वे आगम और नो आगम के भेद से दो प्रकार के, देखो निक्षेप चार प्रकार के मूल में बताए हैं, नाम निक्षेप है, किसी चीज का कुछ भी नाम रख दो, उसमें कोई उसमें वो गुण होने चाहिए ऐसी कोई बात जरूरी नहीं है, तो उसको नाम निक्षेप कह देते हैं। किसी एक पदार्थ में दूसरी पदार्थ की कल्पना करना, निश्चय कर लेना, उसको स्थापना निक्षेप कहते हैं। द्रव्य निक्षेप किसके कहने, उसके दो भेद है, आगम द्रव्य निक्षेप और नो आगम द्रव्य निक्षेप, यानी उस विषय संबंधी जानकार जीव उसमें उपयोग नहीं है, उसको आगम द्रव्य निक्षेप से उस जीव को ही, अभी हम जानने वाले जीव को बंधक कहेंगे, जो बंधक बंधक संबंधी शास्त्र का जानकार हो उस जीव को बंधक कहेंगे, परंतु उसका उपयोग उसमें नहीं है। नो आगम में तीन भेद है, वो जीव का शरीर, नुआगम ने नहीं जानने वाला, तो नहीं जानने वाला कौन है, शरीर, उसको ज्ञायक शरीर कहा, हो सकता है वह जीव जो अभी नहीं जान रहा है भविष्य में जानेगा, और इनको छोड़कर अन्य जो कुछ, तो ज्ञायक शरीर में भी भूत ज्ञायक शरीर, वर्तमान ज्ञायक शरीर और भविष्य ज्ञायक शरीर, तीन भेद उसमें भी किए थे। भूत ज्ञायक शरीर में भी जो छोड़कर आया है वो किस तरह से छूटा था, च्युत चावित और त्यक्त, त्यक्त यानी संन्यास मरण से त्यागा हुआ, उसको त्यक्त कहते। फिर त्यक्त में भी उसके अंगिनी मरण वगैरह अनेक भेद बताए, उसकी चर्चा नहीं करना। तो ये द्रव्य निक्षेप से यहाँ बंधक की बात बताए, आगम और नो आगम उसकी बात अभी यहाँ कहेंगे। ये बहुत विस्तार से हमने कर्मकांड में भी देखा है, अभी अपना शिविर में हुआ ना, कितना बताया, और पहली पुस्तक में तो हुआ ही था। जो द्रव्य बंधक है वे आगम और नो आगम के भेद से दो प्रकार के हैं। बंधक प्रावृत के जानकार, बंधक संबंधी जो आगम है प्रावृत उसके जानकार, किंतु उसमें अनुपयुक्त जीव आगम द्रव्य बंधक है, यानी उस आगम के जानकार है परंतु अभी उनका उपयोग अन्यत्र है। जैसे मुनिराज को वो मालूम है, उसका अभ्यास है, और अभी वो आहार के लिए निकले हैं, तो अभी उसका उपयोग उनका उसमें नहीं है, तो इसलिए उनको क्या कहें, आगम द्रव्य बंधक। शंका, जो आगम के उपयोग से रहित है उस जीव को आगम कैसे कहा जा सकता है, ये द्रव्य निक्षेप है ना, द्रव्य निक्षेप में उसके अन्य भूतभावी परिवर्तन के वर्तमान में उपचार होता है, द्रव्य वही का वही है। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि आगम संज्ञा को प्राप्त न होने पर भी आगम के संस्कार सहित एवं पूर्व काल में आगम संज्ञा को प्राप्त जीव द्रव्य को आगम कहना पाया जाता है। क्या कहना चाहते हैं, वो पूर्व काल में उन्होंने अभ्यास किया हुआ है, इसलिए वर्तमान में भी उनको आगम कह देंगे। इसी से जिस जीव का आगम संस्कार भ्रष्ट हो गया है उसका ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके भी आगम संज्ञा पाई जाती है। आगम संस्कार का अर्थ है उस संबंधी ज्ञान, परंतु उसने जाना था इसलिए उसको भी कहेंगे। अभी हमने तीन भेद देखे थे ना, उससे मूल में दो भेद देखे थे, आगम और नो आगम। अब नो आगम में तीन भेद किए थे, ज्ञायक शरीर, भावी यानी वो जीव, और तद व्यतिरिक्त। नीचे लिखा देखो, ज्ञायक शरीर, ज्ञायक शरीर यानी वो जानने वाले जीव का शरीर, भले वो वर्तमान में जान रहा है परंतु उसके पूर्व भोग के शरीर को भी ज्ञायक शरीर कहेंगे। वो शरीर नहीं जान रहा है, शरीर ज्ञायक नहीं है, ज्ञायक का शरीर, तो ज्ञायक शरीर। भव्य में जीव लेना, क्योंकि ये जीव आगे चलकर जानने वाला है परंतु अभी नहीं जान रहा है, क्योंकि ज्ञायक शरीर में भी तीन भेद कहते हैं, उसमें भी एक भावी नाम का भेद आता है, उसमें भविष्यकाल का शरीर लेना है, और यहाँ भव्य में जीव लेना है जो आगे चलकर आगम का ज्ञान जानने वाला होने वाला है। और तद व्यतिरिक्त के भेद से, नो आगम द्रव्य बंधक तीन प्रकार के है, उनमें ज्ञायक शरीर और भावी द्रव्य बंधक ये दो भेद सुगम है, क्योंकि यहाँ उसकी चर्चा नहीं की है, उस जानने वाले जीव के शरीर की बात है। वो भी तीन है, भूतकाल का, वर्तमान का और भविष्यकाल का। इस तरह से भावी द्रव्य बंधक में तो जीव लेना, जो जीव आगे चलकर जानकार होगा आगम का, और तद व्यतिरिक्त द्रव्य बंधक दो प्रकार के है। तद व्यतिरिक्त मैंने ना जीव है ना शरीर है, तो कौन हो सकते हैं? कर्म बंधक और नो कर्म बंधक। उनमें जो नो कर्म बंधक है वे तीन प्रकार के हैं, यानी कर्म जो नहीं वो नो कर्म में लेंगे। सचित्त नो कर्म द्रव्य बंधक, अचित्त नो कर्म द्रव्य बंधक, और मिश्र नो कर्म द्रव्य बंधक। उनमें सचित्त नो कर्म द्रव्य बंधक, बंधक यानी बांधने वाले, अभी कर्म को बांधने वाले वो नहीं लेना, अभी कौन से ये तो हाथी बांधने वाले, घोड़े बांधने वाले इत्यादि, सचित्त है ना, सचित्तों को बांधने वाले। अचित्त नो कर्म द्रव्य बंधक, जैसे लकड़ी बांधने वाले, सूपा बांधने वाले, चटाई बांधने वाले इत्यादि। मिश्र नो कर्म द्रव्य बंधक, जैसे आभरणों सहित हाथियों को बांधने वाले इत्यादि। ये उसके अलग अलग भेद बताए। अब जो कर्मों के बंधक है वे दो प्रकार के हैं, इरियापथ कर्म बंधक और सांप्रायिक कर्म बंधक। उनमें जो इरियापथ कर्म बंधक है वे दो प्रकार के हैं। इरियापथक समझते ना, हमने क्या देखा था, वो सातावेदनीय 11वें 12वें 13वें में आता है, एक समय में चला जाता है, उसको इरियापथ बंधक कहेंगे, उसको बांधने वाले, वो इरियापथ बंधक। यहाँ कर्म को बांधने वाले जीव ऐसा लेना है। कर्म बंधक यानी कर्म को बांधने वाले, नो कर्म बंधक यानी अन्य चीजों को बांधने वाले। अभी कर्म को बांधने वालों में दो बातें हैं, कैसे इरियापथ कर्म बंधक यानी जिनको इंद्रिया पथ बंध है, और सांप्राय के 10वें गुण स्थान तक है, कषाय सहित है तो वो स्थिति अनुभाग सहित बांधते हैं, उसको सांप्राय कर्म बंध कहा। उनमें जो इरियापथ कर्म बंधक है, अभी उनके गुणस्थान याद है, अकेले सातावेदनीय बनता है 11वां 12वां 13वां, वो हमने देखा था बंध विचित होने के बाद है ना। तो उनमें से 11वां 12वां 13वें में दो भेद कर सकते हैं आप, छद्मस्तर सर्वज्ञ है ना। तो यही कह रहे हैं यहाँ पर, इरियापथ कर्म बंधक है वे दो प्रकार के, छद्मस्तर केवली यानी 11वां 12वां छद्मस्तर में आ जाएगा, केवली 13वें में आ जाएगा। जो छद्मस्त है वे दो प्रकार के हैं, उपशांत कषाय और क्षीण कषाय। 11वां और 12वां उसको भी उपशांत कषाय छद्मस्तक कहेंगे, क्षीण कषाय छद्मस्तक। जो सांप्रायिक बंधक है वे दो प्रकार के हैं, सूक्ष्म सांप्रायिक और भादर सांप्रायिक। सूक्ष्म सांप्रायिक 10वें वाले हैं और 9वें तक के सारे भादर सांप्रायिक हैं। अब कहते जो सूक्ष्म सांप्रायिक बंधक है वे दो प्रकार के हैं, असांप्रदायिक और बादर सांप्रदायिक एक मिनट मेरी लाइन छूट गई, फिर से पढ़ती हूँ। सूक्ष्म सांप्रदायिक बंधक है वे दो प्रकार के हैं, असांप्रदायिक और बादर सांप्रदायिक। जो बादर सांप्रदायिक है वे तीन प्रकार के हैं, असांप्रदायिक, सूक्ष्म सांप्रदायिक और अनादि बादर सांप्रदायिक। उनमें जो अनादि बादर सांप्रदायिक है वे तीन प्रकार के हैं। अनादि बादर सांप्रदायिक, अनादि से वो बादर सांप्रदायिक बादर कषाय करते आए, यानी अभी तक उन्होंने कभी उसको सूक्ष्म नहीं बनाया था या कभी श्रेणी चढ़ के उतरे नहीं थे, ऐसे जीव लेना है। तो कहते अनादि बादर सांप्रदायिक है वे तीन प्रकार के हैं, उपशामक, क्षपक और अक्षपक अनुपशामक। उनमें जो उपशामक है वे दो प्रकार के हैं, अपूर्वकरण उपशामक और अनिवृत्तिकरण उपशामक। सांप्रदायिक में लेना है ना, इसलिए दसवें वाले को नहीं लेना, सूक्ष्म सांप्रदाय वाले को नहीं लिया। जो क्षपक है वे दो प्रकार के हैं, अपूर्वकरण क्षपक और अनिवृत्तिकरण क्षपक। उनमें जो अक्षपक अनुपशामक है वे दो प्रकार के हैं, यानी जिन्होंने श्रेणी नहीं चढ़ी है वो अनुपशामक अक्षपक। अनादि अपर्यवसित बंधक अनादि के बंधक है, अपर्यवसित पर्यवसाय यानी नाश होना, यानी अनादि से बंधते आए हैं, कभी उन्होंने बंध से रहित नहीं हुए थे हा? और अनादि सपर्यवसित बंधक, अनादि के थे परंतु उसमें बीच में बंध से रहित भी, यानी बादर से रहित हुए थे इस तरह से। हाँ, वो सपर्यवसित बंधक हो गए, सपर्यवसित है ना, उनका नाश हुआ था और फिर शुरू हुआ। इसे हम अनादि शांत भी कहते हैं, अनादि 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 और सादी ऐसा होगा। हाँ, अब ये उन्होंने कितने सभी किसके भेद हुए, द्रव्य निक्षेप की अपेक्षा, आगम नोआगम, नोआगम में गायक शरीर भव्यानी जीव तद व्यतिरिक्त में कर्म बंधक नो कर्म बंधक। नौ कर्म में वो सचित्त अचित्त वगैरह मिश्र देते, मैंने हाथी को बांधने वाले वगैरह वगैरह लिया। कर्म बंधकों में उन्होंने मूल में भेद एरियापथ कर्म बंधक, सांप्रायिक कर्म बंधक। एरियापथ में 11 12 13 है, उसमें छद्मस्थ और सर्वज्ञ, और हाँ उसमें भी छद्मस्थों में भी उपशांत कषाय और क्षीण कषाय दो भेद उसमें किए। सांप्रायिक बंधकों में सूक्ष्म सांप्राय बंधक और बादर सांप्रायिक बंधक, नवे गुणस्थान तक तो बादर सांप्रदायिक है। तो सूक्ष्म सांप्रदायिक बंधक में भी दो प्रकार है, असांप्रदायिक और बादर सांप्रदायिक। यानी सूक्ष्म सांप्रदाय का बंध करने वाले असांप्रदाय में से सूक्ष्म में आए हुए या बादर में से उसमें आए होंगे, नवे से दसवें में आने वाले हो या ग्यारहवें से दसवें में आने वाले, ये दो भेद हो सकते हैं। बादर सांप्रदायिक है वे तीन प्रकार के, असांप्रदायिक, सूक्ष्म सांप्रदायिक और अनादि बादर सांप्रदायिक। उसका अर्थ क्या है, बादर सांप्रदायिक कौन सा, वो नवे तक तो बादर सांप्रदाय वाले हैं, असांप्रदायिक यानी वो असांप्रदाय थी उसमें से वो यानी दसवें में से नवे में आने वाले, असांप्रदाय से सांप्रदाय में नहीं। देखो बादर सांप्रदायिक तीन प्रकार के, बादर सांप्रदाय में आए कहाँ से आए हैं, और सांप्राय से ग्यारहवें में से मरकर चौथे में जाने वाला भी हो जाएगा ना, और सांप्राय में से वो बादल सांप्राय में आ गया। दूसरा सूक्ष्म सांप्राय दिख, दसवें में से उसमें आने वाला है अनादि बादल सांप्राय, अनादि से वो बादल सांप्राय वाला ही है। ऐसे ये तीन प्रकार हो सकते हैं। उनमें जो अनादि बादल सांप्रायिक है वे तीन प्रकार के हैं, यानी अनादि से बादल सांप्राय कर रहा था मगर अभी उपशामक हुआ है तो आठवें वाला है, नौवें वाला है। क्षपक है ने, वो अनादि से बंद कर रहा था, क्षपक से नहीं चल रहा है, आठवां नौवां वाला है। अक्षपक अनुपशामक, अभी उसने श्रेणी नहीं चढ़ी है, ऐसा ही जी। अभी उसमें से उपशामक भी दो प्रकार के हैं, तो अभी हमने देखा आठवें वाले नौवें वाले, क्षपक में भी आठवें वाले नौवें वाले, और अक्षपक अनुपशामक है वे दो प्रकार के बताया, अनादि अपर्यवसित और अनादि सपर्यवसित। अब आगे बढ़ते नीचे से दूसरा पैरेग्राफ, उनमें जो भाव बंधक है, परिवेशन से इतने वो सो सादी वाले है ना, सादी बंधक है, अक्षपक अनुपशामक है, पर उसमें से जो अनादि से बंद करते आए वे है, या पहले कभी करके नीचे उतरे वैसा भी ले सकते उसमें। उनमें जो भाव बंधक है वे आगम भाव बंधक और नो आगम भाव बंधक के भेद से दो प्रकार के हैं। जैसे हमने द्रव्य के भेद आगम और नो आगम देखे थे, भाव में भी आगम और नो आगम ऐसे भेद करना, यानी आगम में तो जानने वाला जीव, उसमें उपयोग वाला लेना। उनमें जो बंध प्रावृत के जानकार, जानकर नहीं जानकार, और उसमें उपयोग रखने वाले है वे आगम भाव बंधक है, नो आगम भाव बंधक, जैसे क्रोध मान माया लोभ व प्रेम को आत्मसात करने वाले, क्योंकि ये तो बंद कर रहे हैं ना उस समय, तो ऐसे जीवों को वहां ले लिया, क्योंकि उस पर्याय से परिणत जीव है। आगम में तो आगम के जानकार है और नो आगम में उस पर्याय से परिणत है। इन सब बंधकों में कर्म बंधकों का ही यहाँ अधिकार है। ये कर्म बंधक यानी कहाँ लिए थे हमने, तद्व्यतिरिक्त वाले में, तद्व्यतिरिक्त द्रव्य निक्षेप की अपेक्षा से कर्म बंधक कहाँ था ना। इन बंधकों का निर्देश करने पर 14 मार्गणा स्थान आधारभूत है, यानी इन मार्गणों को आधार रख के उसमें बंधकों की चर्चा करेंगे। कौन से आगम भाव, आगम द्रव्य में वर्तमान उपयोग नहीं था, आगम भाव, भाव में हमेशा वर्तमान उस रूप परिणत जीव लेना है, उसमें उपयोग वाला, और नो आगम में यानी जानने की बात नहीं, वो तो बंद कर रहे हैं, क्रोध मान माया लोभ से परिणत जीव ले। फिर से नीचे से दो लाइन, इन सब बंधकों में हमने वो सब नाम स्थापना द्रव्य भाव इतनी सब चर्चा, उसके भेद प्रभेद सब जाना, तो ये तो आपने जाना, अभी इस पुस्तक में चर्चा किसकी चलेगी, तो कर्म बंधकों की, कर्म को बांधने वालों की। तो इन सब बंधकों में कर्म बंधकों का ही यहाँ अधिकार ही लगाया। इन बंधकों का निर्देश करने पर यानी कथन करने पर 14 मार्गणा स्थान आधारभूत है, यानी 14 मार्गणाओं में इन बंधकों का विस्तार से विश्लेषण चलेगा। वे मार्गणा स्थान कौन से है ऐसा पूछे जाने पर आचार्य अगला सूत्र कहते हैं, क्योंकि भूल गए ना क्या मार्गणा क्या क्या कहें। ऊपर सूत्र है देखो, गई इंद्रिये काये जोगे वेदे कसाये नाणे संयमे दंसने लेसाये भविये सम्मत सन्नी आहारे चेदी। वो याद है कि भूल गए, गति इंद्रिय काय योग वेद कषाय ज्ञान संयम दर्शन लेशा भव्य सम्यक्त्व संगी और आहार, यही नीचे लिखा है देखो, गति इंद्रिय काय योग वेद कषाय ज्ञान संयम दर्शन लेशा भव्य सम्यक्त्व संगी और आहारक, आहारक लिखा है आहार, ये 14 मार्गणा स्थान है, इनको मार्गणा स्थान कहते हैं। मार्गणा स्थान ने ये संसारी जीव इसमें हम ढूंढते हैं, उनका अन्वेषण करते हैं, इनमें वो पाए जाते हैं। ये अलग अलग अपेक्षाओं से उसके अलग अलग भेद होते हैं। जैसे हमने देखा ना, हमको जो मनुष्य मालूम है अभी, जितने मानव हमको पता है, तो हमने कैसे कोई अपेक्षा से भेद कर सकते हैं? जैसे हम कहेंगे कौन से देश का वासी है, क्योंकि हम भारतीय हैं, कोई चीनी है, कोई अमेरिकन है, कोई अफ्रीकन है, कोई जापानीज है, वो नेशन वाइज उनका डिवीजन हुआ। अब वे के वे जीव, अभी हम अपेक्षा बदल देते हैं तो कहेंगे तो क्या कर रहे हैं, कोई व्यापार धंधा कर रहे हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। तो जब डॉक्टर कहेंगे तो सारे देशों के डॉक्टर एक ग्रुप में आ जाएंगे। पहले ग्रुपिंग अभी कंसिडर नहीं करना, अभी नया ग्रुपिंग होगा। तो अलग अलग अपेक्षाओं से अलग अलग ग्रुप बनाते हैं। ऐसे यहाँ मार्गणाओं में हम अलग अलग अपेक्षाओं से जीवों को खोज करते हैं। जैसे गति की अपेक्षा 4 में विभाजित होगी, इंद्रियों की अपेक्षा उन्हीं सबको जीव तो 5 में डिवीजन हो जाएगी, काय की अपेक्षा तो षटकायिक जीव होते हैं तो उसमें डिवीजन हो जाएगी, इस तरह से उसको मार्गणा कहेंगे। जहां को गमन किया जाए वह गति है, ये एक एक का अर्थ यहां बता रहे। शंका, गति की इस प्रकार निरुक्ति करनी, निरुक्ति यानी वो शब्द कैसे तैयार हुआ, गति क्यों कहते हैं उसको, तो जहां गमन करके जाता है जी। तो शंकाकार क्या पूछता है, अगर आप ऐसी उसकी परिभाषा बनाएंगे तो ग्राम नगर खेड़ा करवट आदि स्थानों को भी गतिपना प्राप्त होता है, क्योंकि हम गांव को भी जाते हैं ना, शहर जाते हैं, बम्बई जाना है, पुणे जाना है, तो उस सबको हम गति कहेंगे, जिसको जहां जाते हैं वहां उसको गति कहेंगे। समाधान, नहीं, क्योंकि रूढ़ी के बल से गति नाम कर्म द्वारा जो पर्याय निष्पन्न की गई है उसी में गति शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह मार्गणा में गति किसको कहेंगे हम, कि गति नाम कर्म के निमित्त से जो पर्याय पाई जाती है, जो पर्याय निष्पन्न हुई नहीं, जो पर्याय उत्पन्न हुई उसको हम गति कहेंगे। जैसे अभी हम आप सब मनुष्य गति नाम कर्म से अभी मनुष्य भव हमारा चल रहा है, तो भी यहां से मरकर कोई तिर्यंच में जावे तो उसके तिर्यंच गति नाम कर्म के उदय में उस पर्याय उसकी निष्पन्न हुई, उत्पन्न हुई। गति नाम कर्म के उदय के अभाव के कारण सिद्धि गति होती है वह अगति कहलाती है। इसका अर्थ क्या है, अनादि से ऐसा एक भी समय नहीं गया जब कोई किसी ना किसी गति नाम कर्म का उदय नहीं था। ख्याल में आई बात, गति नाम कर्म का बंध तो अभाव हो सकता है, 8वें गुणस्थान के ऊपर नहीं बनती है, परंतु उदय तो सबको 14वें गुणस्थान के अंत तक चलता है। तो गति नाम कर्म के उदय के अभाव के कारण सिद्धि होती है, नहीं सिद्धों को वो गति नाम कर्म का उदय मिट जाता है। अथवा एक भव से दूसरे भव में संक्रांति का नाम गति, संक्रांति नहीं यहां से वहां चला जाना, पलटना, और एक भव से दूसरे भव के लिए संक्रांति का न होना सिद्धि गति है। यानी जो मनुष्य गति छोड़कर अन्य किसी गति में संक्रांत नहीं हो रहा वो तो सिद्ध बन चुके। ये सिद्ध, उसको सिद्धि कहा, सिद्धि गति नहीं सिद्ध बनते। अब इंद्रिय शब्द की निरुक्ति कैसी, एक एक शब्द की निरुक्ति यानी वो शब्द कैसे तैयार हुआ उसकी बात करें। जो अपने अपने विषय में निरत हो वे इंद्रिया है, यानी क्या है, इंद्रिया किसको कहते हैं, चक्षु इंद्रिय किसको कहेंगे, क्या काम करते हैं, हाँ देखने में उपयोग लगता है, तो थोड़ी देर के लिए सुनने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, क्यों, अरे आप ही हो ना ऑर्डर देने वाले और जानने वाले, आप एक हो और ये आप ही के 5 इंद्रिया है, तो एक इंद्रिय दूसरे इंद्रिय का काम क्यों नहीं कर रहा, वो अपना अपना स्पेसिफिक विषय को जानेगा। तो अपने अपने विषय में निरत है वे इंद्रिया है, अर्थात अपने अपने विषय रूप पदार्थों में रमण करने वाली इंद्रिया कहलाती है। अथवा इंद्र आत्मा को कहते हैं, और इंद्रों के लिंग का नाम इंद्रिय है, वो इंद्र इंद्रिय ने उनके चिन्ह लिंग उसके। आत्मा की प्रवृत्ति द्वारा उपचित किए गए पुद्गल पिंड को काय कहते हैं। ये गति इंद्रिय भी काय की बात है, काय ने शरीर। आत्मा की प्रवृत्ति द्वारा, आत्मा की प्रवृत्ति यानी वो योग हम कहेंगे वहां पर, आत्म प्रदेशों में जो कुछ कंपन कहो योग कहो जो उत्पन्न होता है वो आत्मा की प्रवृत्ति है। उसमें क्या हुआ, पुद्गलों का संचय हुआ, उपचित किए यानी संचित किए गए, यानी उसने ग्रहण किए कहेंगे ना हम उसको। पुद्गल पिंड को काय कहते हैं, अथवा पृथ्वी काय आदि नाम कर्मों के द्वारा उत्पन्न परिणाम को कार्य में कारण के उपचार से काय कहा है। क्या कहना चाहते हैं, ये पृथ्वी काय अपकाय वगैरह क्या है, वो तो नाम कर्म है, हम तो स्थावर नाम कर्म कहेंगे एक एक, परंतु उसमें ये पांच भेद हो जाते हैं ना, ये त्रस्काय आदि जो पांच छह भेद है, पांच तो स्थावर का है और एक त्रस्काय, तो उसके नाम कर्मों के द्वारा उत्पन्न परिणाम को कार्य में कारण के उपचार से। कार्य क्या हुआ, शरीर उत्पन्न हुआ ना वो, और कारण क्या हुआ उस जीव का जो परिणाम उस संबंधी, उसको काय कहते। अथवा जिसमें जीवों का संचय किया जाए, ये सचय हुआ, संचय किया जाए, ऐसी व्युत्पत्ति से काय बना है। यानी जीवों का संचय किया, यानी जो पृथ्वी काय है वो सभी में ऐसी कोई बातें हैं कि इन सबको हम इकट्ठा उनका ग्रुप बना सकते हैं, उसको काय कहेंगे। ये पृथ्वी काय है, जल काय है, वायु काय, इस तरह से आत्मा की प्रवृत्ति से उत्पन्न संकोच विकोच का नाम योग है। आत्मा की उसमें कुछ प्रवृत्ति हुई और उसमें क्या होता है, प्रदेशों का संकोच विकोच, अर्थात मन वचन और काय के अवलंब से जीव प्रदेशों में परिस्पंदन होने को योग कहते हैं। और ये योग के द्वारा कर्म का ग्रहण होता है। अभी वो बात चली थी, वो विस्तार से चली ना, ऐसा योग जो है वो सभी सर्वात्मा प्रदेशों से होता है, ऐसे कुछ प्रदेशों में होता है कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। और उसमें भी बहुत लंबी चौड़ी बात है, वो शरीर नाम कर्म के उदय से जीव में ये जो उत्पन्न होता है भाव योग कहते हैं उसको, ये कर्म और नो कर्म को ग्रहण करने की शक्ति है वो योग है, और ये परिस्पंदन भी वो योग से ही होता है, उसको भी योग कह देते हैं। परंतु वो स्थित प्रदेशों में भी वो कर्म का बंध होता है, ये उसका अर्थ होता है। अब गति इंद्रिय काय योग हो गया। वेद आत्मा की प्रवृत्ति से मैथुन रूप सम्मोह की उत्पत्ति का नाम वेद है। सुख दुख रूपी खूब फसल उत्पन्न करने वाले कर्म रूपी क्षेत्र का जो कर्षण करते हैं वे कषाय है। क्या कहते हैं, यह उपमा दी है खेत की। खेत में क्या करता है किसान, बीज बोने के पहले क्या करता है, मराठी में मशागत कहते हैं, यानी वो पूरी जमीन इसे खुरेद कर फिर उसके खेती के तैयार करते हैं, उसको कर्षण कहना। तो क्यों, खूब फसल उत्पन्न होती है। अब ये जो यहाँ कौन सी फसल होती है, सुख दुख रूपी फसल, और कर्म रूपी क्षेत्र का जो कर्षण करते कौन है, वे कषाय है। इन्हें कषायों के कारण ये जो कर्म बनते हैं उसे सुख दुख रूप फल मिलता है। कषाय मार्गणा की लिए कषाय का शब्द का, ये सभी शब्दों कैसे तैयार हुए उसकी बात कर रहे हैं। जो यथार्थ वस्तु का प्रकाशक है अथवा जो तत्वार्थ प्राप्त कराने वाला है वह ज्ञान है। अब संयम, व्रत रक्षण, समिति पालन, कषाय निग्रह, दंड त्याग और इंद्रिय जय का नाम संयम है। अथवा सम्यक रूप से यम का नाम संयम है। ये सम्यक रूप से यम लिखा है, ये तो द्रव्य यम भी हो सकता है, यानी केवल वो नियम पालना उसको संयम नहीं कहा। सम्यक रूप यानी यथार्थ, उसमें जो भाव में उतनी वितरकता है और बाह्य में ऐसे नियम पालन होता है उसको संयम नाम दे दिए। प्रकाश रूप वृत्ति का नाम दर्शन है। आत्म प्रवृत्ति में संश्लेषण करने वाली लेशा है अथवा लिंपन करने न नहीं निकालना निकाल देना न लिंपन करने वाली लेशा है। लिंपन करती है कर्म से लिपती है यानी उसे बंद होता है। जिस जीव ने निर्वाण को पुरस्कृत किया है अर्थात अपने सन्मुख रखा है वह भव्य है, और उससे विपरीत अर्थात निर्वाण को पुरस्कृत नहीं करने वाला जीव अभव्य है। तत्वार्थ के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है अथवा तत्वों में रुचि होना ही सम्यक्त्व है। अलग अलग पद्धति से उसकी परिभाषा बताए। अथवा प्रशम संवेग अनुकंपा और आस्तिक्य की अभिव्यक्ति ही जिसका लक्षण है वही सम्यक्त्व है। पर इसमें वो प्रशमाभास वगैरह भी हो सकते हैं, क्योंकि मिथ्या दृष्टि को भी ऐसे बाह्य में तो वो कितना भला है ऐसा दिखाई देता है, वो अभव्य भी हो सकता है। परंतु जो सम्यक दृष्टि है उसके ये ऐसे बाह्य लक्षण पाए जाते हैं। शिक्षा क्रिया उपदेश और आलाप को ग्रहण करने वाला जीव संगी है। शिक्षा हम जो ट्रेन कर सकते हैं जिन एनिमल्स को, तो मनुष्यों में तो ठीक है परंतु प्राणियों में भी तिरियंचों में भी हम देखते हैं ना। क्रिया यानी कोई उसके कार्य करने को सिखाते हैं। उपदेश जैसे कोई बोला तो वो याद कर सकते हैं। आलाप को ग्रहण करने वाला जीव संगी है। उससे विपरीत अर्थात शिक्षा क्रियादि को ग्रहण नहीं कर सकने वाला जीव असंगी है। शरीर बनाने के योग्य पुद्गल पिंड को ग्रहण करना ही आहार है। यहाँ आहार में नौकर्म आहार लिया जिससे शरीर बनता है। उससे विपरीत अर्थात शरीर के योग्य पुद्गल पिंड को ग्रहण नहीं करना अनाहार है। ये 14 के उन्होंने निरुक्ति पूर्वक अर्थ बताए। इन्हीं पूर्वोक्त 14 स्थानों में जीवों की मार्गणा अर्थात खोज की जाती है, यानी वो गति की अपेक्षा इंद्रिय की अपेक्षा वगैरह वगैरह जीवों की खोज की जाती है, यानी उसमें कहाँ कहाँ जीव है उसकी बात की जाती है, यानी उसमें जो भेद पाए जाते हैं उसको कहेंगे स्थान, उसके इसको मार्गणा स्थान कहेंगे। फिर से इन्हीं पूर्वोक्त 14 स्थानों में जीवों की मार्गणा यानी खोज की जाती है, इसको मार्गणा का ही अर्थ होता है खोज अन्वेषण, इसीलिए इनका नाम मार्गणा है। अब ये तो पहले नाम बताए 14 और हरेक का अर्थ बता दिया, शब्द का अर्थ कैसे तैयार हुआ। अब आगे का सूत्र पढ़ेंगे। गदियाणु वादेण निरय गदीये नेरैया बंधा। गति मार्गणा के अनुसार नर गति में नार की जीव बंधक है। अभी हर एक गति में बताएंगे कहाँ गंधक है कभी अबंधक है वगैरह उसकी चर्चा करेंगे। यहाँ तो यह है पहले सत्प्रम है बंधक है बस इतनी बात है उसको बताएंगे। होते हैं चारों गति में, एक एक गति का नाम लेके बताएंगे बंधक है करके, आसान है उसमें कुछ कठिन नहीं है। हाँ तिरिक्खा बंध, अभी नीचे उसका स्पष्टीकरण पहले पढ़ते। यहाँ सूत्रोक्त बंध शब्द से बंधक का ही अभिप्राय है। बंधा लिखा है ना, नेरे या बंधा लिखा था ना, तो उसका अर्थ बंधक, क्योंकि बंध और बंधक इन दोनों पदों की एक ही कारक में निष्पत्ति है। अर्थात ये दोनों ही शब्द बंध धातु से कर्ता कारक के अर्थ में क्रमशः अच उन लुल प्रत्यय लगकर बनने हैं। यानी बंधे ये धातु है। अभी ये तो संस्कृत के व्याकरण की बात है, अभी उसकी बात छोड़ दो। तिरिखा बंधा, तिरियंच बंधक है, क्योंकि उनमें बंध के कारणभूत मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग पाए जाते हैं। देखो बंध के कारण क्या है, मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग, ये अविरति को उसी में गठित करते। कभी कभी अविरति ने असंयम आ गया, प्रमाद को उसी में गर्भित कर देते, कषाय में गर्भित कर देते। यानी चार ही कारण बताते हैं, कहीं कहीं पांच खोल कर कहेंगे तो पांच कारण है। शंका, यहाँ सूत्र में तिरिक्ख गदीये अर्थात तिरियंच गति में ऐसा पद क्यों नहीं कहा, उसका समय यानी तिरियंच गति में बंधक है ऐसा क्यों नहीं कहा। यह कोई दोष नहीं, क्योंकि अर्थापत्ति न्याय से उस अर्थ की उपलब्धि हो जाती है। यानी तिरियंच बंधक है कहने से वो तिरियंच गति में ही होते हैं, वो तो बात ख्याल में आ जाती है। क्योंकि उनका प्रश्न ऐसा क्यों कहा तिरियंच बंधक है, तो कि गति मार्ग ना चल रही है तो तिरियंच बंधक ऐसा क्यों कह रहे, तिरियंच गति में बंधक ऐसा कहो, तो कहते कि उसी से वही अर्थ निकलता है। अब कहते देवा बंधा, देव बंधक है, यह सूत्र सुगम है। अब मनुष्य बंधक है कि नहीं है, हाँ भी है नहीं भी है, क्योंकि मनुष्य कहने से वो चौदवे वाले भी तो मनुष्य है ना। देखते मनुष्य बंधा भी अत थी, अबंधा भी अत थी, मनुष्य बंधक भी है और अबंधक भी है। कर्म बंधक के कारणभूत मिथ्यात्व, असंयम, कषा और योग, इन सब का अयोग केवली गुणस्थान में अभाव होने से अयोगी जिन अबंधक है, शेष सब मनुष्य बंधक है। सयोगी को भी बंधक में लेंगे, क्योंकि उनको भी वो यिर्यापत वाला बंधक है, क्योंकि वे मिथ्यात्वादी बंधक के कारणों से संयुक्त पाए जाते हैं। जब तक योग है तब तक उनको बंधक भी कहेंगे। अब कहते सिद्धा अबंधा, सिद्ध अबंधक है, क्योंकि सिद्ध बंध कारणों से व्यतिरिक्त मोक्ष के कारणों से संयुक्त होते हैं। अब शंकाकार पूछ रहे हैं बंध के कारण कौन से हैं, क्योंकि बंध और बंध के कारण जाने बिना मोक्ष के कारणों का ज्ञान नहीं हो सकता। और उसके लिए कहा भी है उन्होंने, ये श्लोक गाथा प्रस्तुत करते, जे बंध यरा भावा मुख यरा भावी जे दु अज्जपे जे चा विबंध मुखे अकराया ते विविन्नेया। अध्यात्म में जो बंध के उत्पन्न करने वाले भाव है और जो मोक्ष को उत्पन्न करने वाले भाव है, तथा जो बंध और मोक्ष दोनों को नहीं उत्पन्न करने वाले भाव है, वे सब भाव जानने योग्य हैं। अतएव बंध के कारण बतलाना चाहिए, ये प्रश्नकार की प्रश्न है। क्योंकि बंध करने वाले भावों को और मोक्ष करने वाले भावों को और दोनों को नहीं करने वाले भावों को जानना चाहिए, तो उसका समाधान करते हैं। मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग, ये चार बंध के कारण हैं। और सम्यक दर्शन, संयम, अकषाय और अयोग, देखो मिथ्यात्व के उल्टा समय दर्शन लिया, असंयम के विरुद्ध संयम लिया, कषाय के विरुद्ध अकषाय लिया, योग के विरुद्ध अयोग, ये चार मोक्ष के कारण हैं। कहा भी है, अभी यहाँ गाथा प्रस्तुत करते हैं। ऊपर जो दो नंबर की लिखी है ना, मिच्छत्ता विरदीविय कषाय जोगाय आसवाहोंती दंशन विरमण निग्रह निरोहया संवरो होती। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, ये कर्मों के आश्रव भाव है, अर्थात कर्मों के आगमन द्वार है, इनके कारण कर्मों का आगमन होता है। तथा सम्यक दर्शन संयम अर्थात विषय विरक्ति, कषाय निग्रह और मन वचन काय का निरोध, ये संवर अर्थात कर्मों के निरोधक भाव है, या आश्रव भाव और कर्मों के निरोधक भाव, उसमें संवर लिया। ये उसके उक्तम च यानी वीरसेन स्वामी ने जब ये टीका लिखी तब उन्होंने उद्धरण दिए इन गाथाओं। मूल में तो केवल ये थे ना, सूत्र थे वीरसेन आचार्य ने लिखे, उनके सामने तो कुनकुंद आचार्य के, उनके तो समय सार की बात छोड़ो, उनके सामने तो उनका परिक्रम भी था लिखा हुआ, जो षटखंडागम की टीका थी, जो आज हमें अवेलेबल नहीं, उनके सामने थी तभी। वीरसेन आचार्य मेरे ख्याल से छठवीं आठवीं कौन सी शताब्दी में हुए, पहले देखना पड़ेगा, फिर धवला निकाल के आठवीं में ही हो गए शायद। शुरुआत में सब पूरी हिस्ट्री दी थी ना, कौन कब हुए थे वगैरह, इसमें नहीं है, पहली पुस्तक में है, विस्तार से है उसमें। हाँ बाद में हुए है ना वो तो, पर ये नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती के पूर्व में हुए थे। हाँ अब यहां पढ़ते शंका फिर 9 पेज पर लास्ट नीचे, यदि यही मिथ्यात्वादी चार बंध के कारण है तो शंकाकार फिर और अन्य प्रस्तुत कर रहे, 3 नंबर के जो है, ओदया बंधयरा उवसम खय मिश्याय मोखयरा भावोदुपारिणामियो करणो भयवज्यो होंती। तो कहते औदयिक भाव बंध करने वाले है, औदयिक नहीं औदयिक, औषमिक शायिक और क्षयोक्षमिक भाव मोक्ष के कारण है, तथा पारिणामिक भाव बंध और मोक्ष दोनों के कारण से रहित है। इस सूत्र गाथा के साथ विरोध उत्पन्न होता है, ये उनका प्रश्न है, क्योंकि कर्मों के आगमनदार कौन से बताए, मिथ्यात्व अविरति कषाय और योग। अब यहाँ कहते हैं औदयिक भाव को ही लेना है, औषमिक शायिक क्षयोक्षमिक, क्योंकि उसके भावों की भाषा में उन्होंने प्रश्न पूछे। तो कहते वो सूत्र गाथा है, उसके साथ विरोध होगा। तो कहते समाधान, कहते ऐसा कहने पर कहते हैं कि विरोध नहीं उत्पन्न होता है, क्योंकि औदयिक भाव बंध के कारण है ऐसा कहने पर सभी औदयिक भावों का ग्रहण नहीं किया है, क्योंकि वैसा मानने पर गति जाति आदि नाम कर्म संबंधी औदयिक भावों के भी बंध के कारण होने का प्रसंग आ जाएगा। शंका, देवगति के उदय के साथ भी कितनी ही प्रकृतियों का बंध होना देखा जाता है, फिर देवगति का उदय उनका कारण क्यों नहीं होता, क्या कहना चाहते हैं? कोई गति नाम कर्म है, उसका उदय होने पर अन्य भी बंध होते हैं, तो गति नाम कर्मों को कहो ना बंध का कारण, ऐसा उनका प्रश्न है। ऐसा कहने पर कहते कि उनका कारण देवगति का उदय नहीं होता, देवगति के उदय रहते हुए बंध है, परंतु वो देवगति के कारण वो बंध नहीं है, क्योंकि देवगति के उदय के अभाव में नियम से उनके बंध का अभाव नहीं पाया जाता। जहां देवगति का उदय नहीं है, अन्यत्र जो है उनके भी उसका बंध तो होता है, यानी वो उसके बंध का कारण नहीं था। जिसके अन्वय और व्यतिरेक के साथ नियम से जिसके अन्वय और व्यतिरेक पाए जावे, वह उसका कार्य और दूसरा कारण होता है। यानी जब वो अविनाभाव रूप से पाए जाते हैं तब उसका कार्य और कारण बनेगा। अर्थात जब एक के सद्भाव में दूसरे का सद्भाव और उसके अभाव में दूसरे का भी अभाव पाया जावे तभी उनमें कार्य कारण भाव संभव हो सकता है, अन्यथा नहीं। जैसे ये अग्नि के सद्भाव में धुएं का सद्भाव, अग्नि के अभाव में धुएं का अभाव, उल्टा नहीं लेना। धुएं के अभाव में अग्नि का अभाव नहीं कह सकते क्योंकि धुएं बिना भी अग्नि देखी जाती है। अग्नि के सद्भाव में धुएं का सद्भाव, अग्नि के अभाव में धुएं का अभाव, उसको फिर अभी हम उसके परिभाषा पढ़ेंगे। जिसके अन्वय और व्यतिरेक के साथ नियम से जिसके अन्वय और व्यतिरेक पाए जावे, अन्वय ने अभी सद्भाव में, यानी अगर देवगति का उदय है उसमें अगर बंध है और अगर देवगति का उदय नहीं और बंध अगर रुक जावे तो हम कहेंगे वो देवगति के कारण होता था, ऐसा तो नहीं पाया जाता है। ख्याल में आई बात? इस न्याय से मिथ्यात्व आदि ही बंध के कारण है, यानी अन्य कोई भी ये जो बहुत सारे बातें हैं वो बंध का कारण नहीं है। मिथ्यात्व आदि जो बताए हैं उन्होंने, मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग, यही बंध के कारण। इन कारणों में अभी देखो, अभी आपने पढ़ा है ना सब बंध विच्छित्ति, अब ये बात यहाँ आ रही है, कौन किसके कारण क्या क्या बनते हैं उसकी बात अभी यहाँ चलेगी। देखो यहाँ पढ़ रहे, इन कारणों में अभी प्रकृतियों के नाम बताएंगे और उसका कारण बताएंगे। मिथ्यात्व, नपुसक वेद, नरकायु, नरक गति, एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, तीनद्रिय, चतुरिंद्रिय जाति, कुंड संस्थान, असंप्राप्ता सुरुपाटिका सहनन प्राकर्णता, नरक गति प्राज्ञान पूर्वी, आतप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण, इन 16 प्रकृतियों के बंध का मिथ्यात्वोदय कारण है। क्योंकि पहले गुणस्थान में होने वाली बंध विच्छित्ति है ना, ये मिथ्यात्व के कारण से बंधने वाली है, मिथ्यात्व के उदय में ये बनती है। क्योंकि क्योंकि मिथ्यात्वोदय के अन्वय और व्यतिरेक के साथ इन 16 प्रकृतियों के बंध का अन्वय और व्यतिरेक पाया जाता है, यानी मिथ्यात्व के उदय में वो बनती है, मिथ्यात्व के अनुदय में वो नहीं बनती, यानी समय दृष्टि के दूसरे तीसरे आदि गुण स्थानों में वो नहीं बनती, ये उसका अर्थ होता है। अब दूसरे गुणस्थान जिसको अनंतानुबंधी की बात करेंगे, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्त्यान वृद्धि, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ। पेज नंबर 11 पर आ गए अभी हम, 10 में लास्ट लाइन हमने पढ़ ली थी, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्त्यान वृद्धि, यानी दर्शनावरण की ये तीन हुई, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ, स्त्री वेद, तिर्यंच आयु, तिर्यंच गति। अब न्यग्रोध है ना, न्यग्रोध परिमंडल, ये सब बीच वाले 4 संस्थानों के नाम है, स्वाति, कुब्जक और वामन शरीर संस्थान। अब 4 सहनन, वज्रनाराच, नाराच, अर्धनाराच और कीलित शरीर सहनन, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्त व्याय गति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीच गोत्र, इन प्रकृतियों के बंध का अनंतानुबंधी चतुष्क का उदय कारण है। क्योंकि उसी के उदय के अन्वय और व्यतिरेक के साथ इन प्रकृतियों का भी अन्वय और व्यतिरेक पाया जाता है, यानी जहाँ उसका बंध है वहाँ इनका उदय होते हुए इनका बंध है, जहाँ बंध नहीं है वहाँ इनका उदय नहीं तो उनका बंध भी नहीं है। जैसे तीसरे वगैरह गुणस्थानों में इनका बंध नहीं पाया जाता, वही 25 प्रकृति वाले, पहले 16, ये 25, हमने अलग ऑर्डर से याद किया था। पहले हम कषायों को बता देते, अनंतानुबंधी 4, फिर स्त्यान वृद्धि 3, फिर 4 संस्थान, 4 सहनन, तिर्यंच संबंधी तीरंज गति तीरंज गत्यानुपुरी तीरंजावर उद्योत दुर्भग दुस्वर अनादेय स्त्रीवेद नीच गोत्र अप्रशस्त विहाय व्यक्ति। इस तरह से हमने याद किए थे उसको, बात एक ही है। तीसरे गुणस्थान में कोई बंध विच्युति नहीं है, यानी उसके साथ अन्वय व्यतिरिक्त किसी का सम्यक मिथ्यात्व के साथ नहीं है। इसलिए चौथे की बात करेंगे, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, मनुष्यायु मनुष्य गति, औदारिक शरीर औदारिक अंगोपांग, वज्र ऋषभ नाराज सहनन, वो वज्र ऋषभ लिखा है केवल, नाराज शब्द डाल दो, ऊपर वज्र ऋषभ लिखा था इसलिए उन्होंने वज्र ऋषभ इतना ही लिया था, और मनुष्य गत्यानुपूर्वी इन दस प्रकृतियों के बंध का अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क का उदय कारण है, क्योंकि उसके बिना इन प्रकृतियों का बंध नहीं पाया जाता, यानी इनका बंध यहां तक पाया जाएगा। यह हमने ये भी देखा था कि मनुष्यायु मनुष्य गति वगैरह मनुष्य संबंधी जो बंध होते वो देव नारकियों को बंधेगा, चौथी गुणस्थान वाले को, मनुष्य इनका बंध नहीं करेगा सम्यक दृष्टि होने पर। प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया और लोभ इन चार प्रकृतियों के बंध का कारण इन्हीं का उदय है, क्योंकि अपने उदय के बिना इनका बंध नहीं पाया जाता, यानी पांचों गुणस्थान के बंध की विच्युति में चार आते हैं। अब छठे की बंध विच्युति, असाता वैज्ञ अरति शोक अस्थिर अशुभ और अयशस कीर्ति, इन छह प्रकृतियों के बंध का कारण प्रमाद है, क्योंकि प्रमाद के बिना इन प्रकृतियों का बंध नहीं पाया जाता। अब यहाँ पूछ रहे कि प्रमाद क्या है, क्योंकि मूल में तो चार ही कारण गिनाए थे ना उन्होंने, अब यहाँ अलग अलग कषायों को अलग अलग, क्योंकि मिथ्यात्व असंयम इतना ही दिया था उन्होंने, परंतु यहाँ अनंतानुबंधी की बात अलग बताई, अप्रत्याख्यान की बात अलग बताई, प्रत्याख्यान की बात अलग बताई, इसलिए अभी कहते प्रमाद किसे कहते हैं। समाधान, चार संज्वलन कषाय और नौ नौ कषाय, इन तेरह के तीव्र उदय का नाम प्रमाद है। शंका, पूर्वोक्त चार बंध के कारणों में प्रमाद का कहां अंतर्भाव होता है, उसका समाधान, कषायों में प्रमाद का अंतर्भाव होता है, क्योंकि कषायों से पृथक प्रमाद नहीं पाया जाता, यानी जब हम मिथ्या तो असंयम कषाय और योग कहते हैं तो उसमें कषाय में ये अंतर्भूत हो जाते हैं। देवायु के बंध का भी कषाय ही कारण है, क्योंकि ये सातवें गुणस्थान की बंध विच्छिति, इसलिए इसको अलग से लिया, देवायु को अकेली को लिया, क्योंकि प्रमाद के हेतुभूत कषाय के उदय के अभाव से अप्रमत्त होकर मंद कषाय के उदय रूप से परिणत हुए जीव के देवायु के बंध का विनाश पाया जाता है। क्या कहना चाहते हैं, यानी जिसने छठे गुणस्थान में देवायु का बंध प्रारंभ किया वो अभी मंद उदय हुआ ना सातवें में गया, तो बाद में उसका आयु का बंध भी रुक जाता है। सातवें में कोई नए से चालू नहीं करता, छठे में जो नहीं चालू किए वो सातवें में चालू रहता है। अप्रमत्त होकर फिर उसका विनाश पाया जाता है। निद्रा और प्रचला, इन दो प्रकृतियों के भी बंध का कारण कषायोदय ही है, क्योंकि अपूर्वकरण काल के प्रथम सप्तम भाग, पहला सप्तम भाग यानी सात भागों में से पहला भाग, संज्वलन कषायों के उस काल के योग्य तीव्र उदय होने पर इन प्रकृतियों का बंध पाया जाता है। क्या कहना चाहते, अपूर्वकरण के शुरुआत में जो संज्वलन का उदय है उसके निमित्त से इनका बंध होगा, परंतु बाद में जैसे अपूर्वकरण है तो विशुद्धि बढ़ती है तो कषाय का उदय भी कम होगा, इनका बंध रुक जाएगा। इन्हें पहले भाग के बंध विच्छित्ति में इसको लिया, निद्रा और प्रचला, फिर छठे भाग में किसको लेते हैं, हम तीस प्रकृतियों को लेते हैं, हाँ, तो देवगति पंचेंद्रिय जाति वैक्रिय कहारक तेजस और कारमान शरीर, समचतुर संस्थान, वैक्रिक शरीर अंगोपांग, आहारक शरीर अंगोपांग, वर्ण गंध रस स्पर्श, देवगत्यानुपूर्वी, अग्रुलघु उपघात परघात उच्छ्वास, प्रशस्त विहाय गति, त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक शरीर, स्थिर शुभ सुभग सुस्वर आदेय निर्माण और तीर्थंकर, इन 30 प्रकृतियों के भी बंध का कषायोदय ही कारण है, क्योंकि अपूर्वकरण काल के 7 भागों में से प्रथम 6 भागों के अंतिम समय में मंदतर कषायोदय के साथ इनका बंध पाया जाता है, उसके आगे नहीं पाया जाता है, यहीं पर उसकी बंध विच्छित्ति हो जाती है। हास्य रति भय और जुगुप्सा, इन 4 के बंध अधप्रवृत्त और अपूर्वकरण निमित्तक कषायोदय कारण है, क्योंकि उन्हीं दोनों परिणामों के काल संबंधी कषायोदय में ही इन प्रकृतियों का बंध पाया जाता है, यानी 8वें के अंतिम समय तक इनका बंध है, ऊपर नहीं है। यह भी आपको आसान लगता होगा, ये सब बंध विच्छित्ति हुई ना वहां पर अपने। 4 संज्वलन कषाय और पुरुष वेद, इन 5 प्रकृतियों के बंध का बादर कषाय कारण है, क्योंकि सूक्ष्म कषाय के सद्भाव में इनका बंध नहीं पाया जाता, यानी वो 9वें गुणस्थान में क्रम से इनकी बंध विच्छित्ति होती है, पुरुष वेद, फिर क्रोध, फिर मान, फिर माया, लोक, संज्वलन के। अब 10वें गुणस्थान की बताएंगे, 5 ज्ञानावरणीय, 4 दर्शनावरणीय, यशस कीर्ति, उच्च गोत्र और 5 अंतराय, इन 16 प्रकृतियों का सामान्य कषायोदय कारण है, क्योंकि कषायों के अभाव में इन प्रकृतियों का बंध नहीं पाया जाता, इसलिए वो सामान्य कषाय भाव बस वो 10वें तक है सूक्ष्म लोक, तो वहां तक इनका बंध भी है। 7 वेदनी के बंध का योग ही कारण है, क्योंकि मिथ्या तो असंयम और कषाय इनका अभाव होने पर भी अकेले योग के साथ ही इस प्रकृति का बंध पाया जाता है, और योग के अभाव में इस प्रकृति का बंध नहीं पाया जाता, और इनके अतिरिक्त अन्य कोई बंध योग्य प्रकृतियां नहीं है जिससे कि उनका कोई अन्य कारण हो। अब शंकाकार पूछते हैं, असंयम भी बंध का कारण कहा गया है, सुबह किन प्रकृतियों के बंध का कारण है? समाधान, यह शंका ठीक नहीं है, क्योंकि संयम के घातक कषाय रूप चारित्र मोहनीय कर्म के उदय का ही नाम असंयम है। हमने देखा ना, प्रत्याख्यानावरण का उदय है तब तक असंयम है, प्रत्याख्यानावरण के उदय में यानी वो बाकी रुक जाने पर फिर वो संयम असंयम हो सकता है। शंका, यदि असंयम कषायों में ही अंतर्भूत होता है फिर उसका पृथक उपदेश किस लिए किया जाता है? इसे प्रमाद को गर्भित किया, इसको भी कर दो ना, 3 ही बताओ, मिथ्यात्व और फिर कषाय और योग, इसको अलग से क्यों बताएं? समाधान, यह कोई दोष नहीं, क्योंकि व्यवहार नय की अपेक्षा से उसका पृथक उपदेश दिया गया है, किया गया है। व्यवहार नय नहीं हो तो उसके भेद करके कथन करना, वो व्यवहार नय होता है। बंध कारणों की यह प्ररूपणा पर्यार्थिक नय का आश्रय करके की गई है, यानी वो बंध के कारणों को भेद करके बताया गया है, पर द्रव्यार्थिक नय का अवलंबन करने पर तो बंध का कारण केवल एक ही है, क्योंकि कारण चतुष्क के समूह से ही बंध रूप कार्य उत्पन्न होता है, ये सबका मिलकर उसको कारण कहने में आएगा। इस कारण ये ही बंध के कारण है। ये बंध के कारण क्यों है उसकी चर्चा यहाँ बताई, क्योंकि वो बंध उनके उनके उदय में कौन कौन से प्रकृति बनती है, इसी का अर्थ उसकी बंध विच्छित्ति कहाँ किसकी होती है। इनके प्रतिपक्ष कौन से बंध के कारण देखे हमने, मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग। इनके प्रतिपक्षी यानी इनके उल्टे कौन है? सम्यक्तोत्पत्ति, देश संयम, संयम, इसमें दो भेद किए, असंयम के विरोध में देश संयम, संयम अनंतानुबंधी विसंयोजन, दर्शन मोह क्षपण, चारित्र मोह उपशमन, उपशांत कषाय, चारित्र मोह क्षपण, क्षीण कषाय और सयोग केवली, ये परिणाम मोक्ष के कारणभूत है, क्योंकि इनके निमित्त से प्रति समय असंख्यात, वो बराबर करो अख्यासंत हुआ, असंख्यात गुणश्रेणी रूप से कर्मों की निर्जरा पाई जाती है। क्या कहना चाहते हैं, ये एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे असंख्यात गुणा निर्जरा वाले स्थान जो तत्वार सूत्र में भी बताया है, तो कहते हैं पहले में पहले सम्यक्त्व की उत्पत्ति, दूसरा है वो देश संयम, तीसरा है वो संयम, उससे भी अनंतानुबंधी की विसंयोजना में गुण श्रेणी ज्यादा है, निर्जरा ज्यादा होती है, वो भले वो चौथे गुणस्थान वाला भी करता है। फिर दर्शन मोह की क्षपना, उससे भी चारित्र मोह की उपशमना करने वाले आठवें नौवें दसवें वाले, फिर उपशांत कषाय, फिर चारित्र मोह क्षपण यानी आठवें नौवें दसवें वाले, उससे क्षीण कषाय और उससे भी संयोग केवली के परिणाम, ये क्या है, उनके निमित्त से प्रति समय असंख्यात गुण श्रेणी रूप से कर्मों की निर्जरा है, यानी वो असंख्यात गुणा वाला गुणकार भी बढ़ता चला जाता है। किंतु जीवत्व भव्यत्व अभव्यत्व आदि जो पारिणामिक भाव है, वे बंध और मोक्ष दोनों में से किसी के भी कारण नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा बंध या मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। ये औदयिक में से कौन कौन से है उसकी बात उन्होंने की है, बाकी जो पारिणामिक भाव है उसके कारण न बंध होता है न मोक्ष होता है। अब ये आगे की जो बात है वो कल पढ़ेंगे, क्योंकि वो विषय अलग है जरा। जावानी के ज्ञान तय सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देव।